ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्र मथाशिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे ओम शांति शांति शांति। चंद्रशेखर 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 पाही मां चंद्रशेखर 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 पाही मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाही मां राम राघव राम राघव पाही मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां।
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी, इसका प्रसंग चल रहा है प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत। ये कार्यक्रम 16 तारीख से 29 तारीख तक सायं 5:30 से 7 बजे तक का इस कार्यक्रम के आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी की 71वां श्लोक।
आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्तै शिवस्मरण बाण गणेरमोघ निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंदमा बहति सुस्थिर राजलक्ष्मीम् ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम् भित्वा महाबलिभिवीरीश्वर नाम मंत्रयी दिव्याश्रितं भुजगभूषण मुद्वहंती ये पाद पद्म मिहते शिवते कृतार्थः भूदारता मुदवहाद्यत इद्यपद ददपेक्षया श्री भूदारयेव किमत सुलभे लवस्व केदारमा कलित मुक्ति महौषधीनाम् पादारविन्द भजनम् परमेश्वरस्य आशापाशक्लेशदुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः आशाशाटी कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु।
तो कल के प्रसंग में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से रखते हैं
और कहते हैं कि महाराज मैं आपका हूं, इसीलिए अपने व्यक्तियों के दोष और गुण को विचार नहीं किया जा सकता। आपके होने के कारण मुझ में कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक मनुष्यों में हजार हजार दोष रहते हैं, और जिस समय मनुष्य परमात्मा का हो जाता है एक ही गुण ऐसा है कि परमात्मा के होते ही सभी दोष हट जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। एक नीति वाक्य है, सर्वे पदास्ति पदे निमग्नः। हाथी का जो पांव होता है बहुत बड़ा होता है, हाथी के अलावा सभी जीवों का पांव साइज में छोटा ही रहता है। हाथी जिस जगह पर वह अपने पांव रख लेता है और जितनी जगह वह पांव से घेर लेता है उसके पांव के अंदर सभी जीवों के पांव आ जाते हैं। लेकिन चींटी जिस जगह पर अपने पांव रखती है उतने पांव में हाथी का पांव समाएगा नहीं। इसी तरह जीवन में भगवान का भक्त होना, इससे बढ़कर और कोई गुण है ही नहीं। जब इंसान भगवान का परम भक्त हो जाता है उसके जीवन के सारे दोष हट जाते हैं। यदि कदाचित कोई दोष रह भी जाते हैं तो भी वो दोष भगवान के उपयोगी ही होते हैं। देख लो, भगवान के भक्त में यूं तो कोई दोष नहीं रहते, यदि कोई दोष रह भी जाते हैं तो वो दोष के बावजूद भी वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त हो जाता है वह भगवान के उपयोगी ही होते, क्योंकि परमात्मा को सभी चाहिए। इस संसार में परमात्मा को सभी प्रकार के व्यक्ति चाहिए, और शायद इसी दृष्टि से परमात्मा ने ये हर प्रकार के व्यक्ति का निर्माण किया है। संसार के सभी जीव परमात्मा की दृष्टि में सब उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। ये तो हम ये परिभाषा करते हैं कि ये उपयोगी है ये अनुपयोगी है, जिसको अनुपयोगी समझते हैं उसका परित्याग कर देते हैं सर्वथा। इसीलिए नीतिकार ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। इस संसार में कोई भी प्राणी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। बड़ा सा बड़ा चोर व्यक्ति भी काम लायक है संसार में, समझे कि नहीं। यदि चोर व्यक्ति परमात्मा के अयोग्य होता अनुपयुक्त होता खुद मक्खन और कपड़े चोरी करने के लिए प्रवृत्त न होते, हुए कि नहीं बोलो। इसका मतलब चोरी करना भगवान के लिए उपयोगी है। और यदि भक्त चोरी करता है तो भगवान के लिए अनुपयोगी नहीं है, भक्त चोरी करता है, ध्यान रखना। इसलिए उसकी चोरी करना भी भगवान के उपयोगी है। तुम यदि कहोगे नहीं महाराज मैं तो संसार में सबसे बड़ा चोर हूं, चोर का सरदार हूं, ईमानदारी से भगवान से कहोगे तो तुम्हारा हमें आवश्यकता है, तुम हमारे पलटन में भर्ती हो जाओ, तो हमारी आवश्यकता है तुम्हारी, हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता था चोरी करने, अब तुम चले जाना मेरे तरफ से और क्या, वो काम तुम कर लिया करो महाराज, तुम्हारे तरफ से क्या क्या काम करना है, हैं? चोरी करना है भाई, क्योंकि तुमको चोरी करने की आदत है, हम तुम्हें चोरी करने का काम देंगे। महाराज क्या चोरी करना है महाराज, हम यहीं बैठे रहेंगे गोलोक में, कैलाश में, साकेत में यहीं बैठे रहेंगे, तुम हमारे तरफ से जाना भक्तों के दिल को चुरा के ले आना, चोरी करने की आदत है ना तुम्हें, ले आना भक्तों का दिल जो है वो चुरा के ले आना यहां, और जब तुम उसके दिल को चुरा कर लाओगे तो वो अपना दिल खोजता हुआ भटकेगा इधर उधर, कहां गया मेरा दिल, कहां गया मेरा दिल, तो उसको जब पता चलेगा कि उसका दिल परमात्मा के यहां है तो अपने दिल लेने के लिए आएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं वो, तो तुम यदि चोरी करना तुम्हारी आदत है तो कोई नहीं, हम तुमको भी काम देंगे, आओ हमारे यहां आओ, है? लेकिन ये नहीं समझना कि चोरी अच्छी चीज है तो हमसे दूर होकर संसार और संसारियों के वस्तु को चोरोगे, चोरी करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। इस श्लोक का अभिप्राय कल भी हमने इस पर काफी चर्चा की थी, हर काम है परमात्मा में, इसलिए वह सिर्फ तुम परमात्मा के हो जाओ तब तुम्हारे जीवन के सारे दोष भी परमात्मा के उपयुक्त हो जाएंगे, और उस दोष के चलते परमात्मा तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। सामान्यतः तो दोष के चलते सभी तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के बाद यदि तुम्हारे में वो दोष हैं तो भी तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रयोग में ले लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। तो ये श्लोक शंकराचार्य जी ने इन भावों से कहा, जड़ता, पशुता, कलंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला श्लोक है ये, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। जड़ता, पशुता, कलंकिता, कुटिल चरत्वम नास्ति मयि देव, तुम्हारा होने के कारण मुझ में ये दुर्गुण नहीं है, और कदाचित यदि अस्ति राजमौले, हे राजमौले, यदि ये दुर्गुण मेरे में है भी, जड़ता है, कलंकिता है, पशुता है, कुटिल चरत्व है भी, तो मैं तुम्हारे काम में तो आऊंगा आऊंगा। जड़ता है तो माला बनाकर पहन लो, है ना? पशुता है तो सवारी चढ़ लो, तुम्हें पशु ही चाहिए ना सवारी के लिए, तो नंदी चाहिए ना, पशु है कि नहीं नंदी। कलंकिता, यदि मेरे जीवन में कोई कलंकिता है तो सिर में लगा लो, तुम्हें कलंकी चाहिए सिर में लगाने के लिए, चंद्रमा कलंकी है इसलिए फिर भी सिर में लगा लिया, तो हमें सिर में नहीं लगाओ, तो नाक में लगाओ, कान में लगाओ, कहीं तो लगाओ, फिर भी तुम्हारे शोभा के पात्र ही बनूंगा मैं, विभूषण ही बनूंगा। कुटिल चरत्व, तो तुम्हारे गले का आभूषण बन जाऊंगा, आदि आदि। अब उसी बात को यहां भक्ति सहित ध्यान का महत्व है। पहले किन श्लोकों से सिर्फ भक्ति की बात करते थे, अब भक्ति सहित ध्यान का क्या महत्व है। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम युक्तेर शिव स्मरण बाण गणेर रमोघई निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंद महावहति सुस्थिर राजलक्ष्मी। इस श्लोक एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रूपक यह है, कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा तभी बना जा सकता है जब वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रबलतम शत्रुओं को परास्त करता है, तब जाकर वह सुस्थिर राजलक्ष्मी शत्रुओं को सर्वथा परास्त किए बिना उसकी राज्यलक्ष्मी सुस्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए अपने भारत का इतिहास रहा है, राजा लोग जब भी विलासी हुए, भोग और विलास में लगे, तब शत्रुओं ने आक्रमण किया और देश पराधीन हुआ, परतंत्र हुआ, पराधीन हुआ। अब राजा लोग यदि सुदृढ़ होते, सजग होते, सावधान होते, तब 1100 वर्ष ही पराधीनता का अनुभव भारतीयों को करना न पड़ता। 900 वर्ष तक तो मुसलमानों ने राज्य किया और हमारे सारे वैदिक संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़कर फेंका, साहित्य संपदाओं को आग लगाकर जला दी। एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 900 वर्ष इतिहास है मुगल साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। लगभग 200 वर्ष क्रिश्चियनों ने राज्य कर दी, तब बड़ा मुश्किल से भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। कुछ कोई लंगोटी के भार पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भार पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए, त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा, डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है, तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है बाबा। रूपक है उस राजा, एक राजा सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता। इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राज्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्य लक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्य लक्ष्मी आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्य लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा। ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा, प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। ये अर्जुन, तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको जितनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे घात लगाकर तुम्हारे साम्राज्य को छीनना चाहते हैं। और ये शत्रु यदि प्रबल होंगे, इन पर तुम विजयश्री प्राप्त नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य रूपी जीवन को, जीवन रूपी साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। तस्मात्म इंद्रियान्यादो नियम्य भरतर सब। इसलिए हे अर्जुन, शत्रु को जीतना हो तो शत्रु के बेस कैंप का पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे हवा में गोली चलाकर शत्रु परास्त नहीं होंगे, समझे? नहीं, आपस में गोली चलाकर शत्रु परास्त होंगे। शत्रु जहां रहकर योजना बना रहे हैं उस ठिकाने का तहस नहस करना चाहिए, उस ठिकाने को अपने कब्जे में लो, तब शत्रु कमजोर होंगे। महाराज, कौन से ठिकाना है, कहां रहते हैं ये शत्रु? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम है, तीन ठिकाने हैं इनके, बाहर इंद्रियों ठिकाना, इंद्रियों में रहकर तुम्हें घात करते हैं, उससे अंदर मन में रहकर तुम्हारा घात करते हैं ये, उसके अंदर बुद्धि में रहकर तुम्हारा घात करते हैं। कैसे घात करते हैं महाराज? इनके घात करने के सिस्टम गीता में बहुत सुंदर ढंग से प्रक्रियागत बता दिया है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। ये देखो उनके घात करने के सिस्टम क्या है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर गंधा निवासयात बाहुर नाव मीमां वसा। ये उनके घात करने की प्रक्रिया है। ये शत्रु पहले तो इंद्रियों को विषय में भेज देंगे और जब विषय के प्रति इंद्रियां पूरी तरह आसक्त हो जाएंगे तो इंद्रिय के पीछे पीछे मन भी जाएगा और मन के पीछे पीछे बुद्धि भी जाएगी। जब इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों विषय में लग जाएंगे तो ये काम और क्रोध रूपी शत्रु आत्मा रूपी राजा को उसी के साथ खींचकर विषय में ले जाकर फंसा देंगे। और आत्मा रूपी राजा मैं विषय में फंस गया कि ये बोध उसको नहीं हो पाता है। आह, क्या मजा आ गया है। बारिश हो रही हो, कॉफी और गरम गरम पकौड़ा खाते समय में यही कहेगा कि क्या मजा आ गया है। और दो पकोड़े की जगह चार पकोड़े खा गया, चार की जगह आठ खा गया, मजा आ गया। और शत्रु कहता है इसी के लिए तो ये सब तैयारी किया है मूर्ख, इसी के लिए तो ये तैयारी किया है। अब जब गरम कॉफी और चार के जगह आठ पकोड़े खा गया, तेल भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नमक भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कॉफी भी है उसमें जो कैफीन होता है कॉफी में वो भी हाई प्रेशर के लिए है, ये सब वातावरण तैयार किया किसने, काम ने। इसको पछाड़ना है, दूसरे उपाय से तो पछाड़ नहीं पाएंगे, इस तरह पछाड़ देंगे। तब खाने के बाद टन खाया तो दूसरे दिन सिर नहीं उठा पा रहा है, क्या हुआ महाराज है, क्या करे, चक्कर आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पहुंच गया डॉक्टर के यहां, महाराज, डॉक्टर ने जब आला लगाकर देखी प्रेशर हाई हो चुका है, अरे तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, कम करो, क्या खाया था कल, पूछेगा डॉक्टर, क्या बताओगे, नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल थोड़ा बारिश ज्यादा भीज गया था, घर में जो है पकोड़े थे तो कॉफी और पकोड़े खाने की इच्छा हुई, थोड़ा दो चार पकोड़े ज्यादा ही खा लिया था, फंस गए भाई है? अब न जप कर पाओगे, न तप कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे, पछाड़ दिया ना है, परास्त कर दिया ना। ये देख लो, पहले तो शत्रु क्या है ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु रहते कहां हैं ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु किस तरह काम करके हमको परास्त करते हैं उस सिस्टम को भी जानना जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को तुम जानोगे तब तो इन शत्रुओं को जीतने में तुम सक्षम होगे, अन्यथा जीवन तो कितनी जीवन हमारा इसी तरह परास्त होकर बर्बाद हुआ है, यदि बर्बाद न होता तो आज तक जीव बनकर न भटकते, जीवन सार्थक होता तो अभी तक जीव बनकर भटकना पड़ता है। बड़ा सुंदर एक श्लोक रूपक के रूप में है, आरूढ़ भक्ति गुण, गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी, डोरी, समझे नहीं, गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में रस्सी डोरी, हाँ। अब चाप शब्द का अर्थ होता है धनु, समझे नहीं, धनुष, धनुष बाण, और उस धनुष में डोरी रस्सी चढ़ाई जाती है। कैसे डोरी, बोले आरूढ़ डोरी, आरूढ़ गुण कुंचिता, जब डोरी कसी जाती है तब धनुष बैंड होकर झुकता है, और डोरी खोल दो तो वह सीधा ही रहता है लकड़ी की तरह, डंडे की तरह। जब एक छड़े में डोरी बांधो जोर से और दूसरे कोने में, दोनों कोने को डोरी से कसोगे तो वह बैंड होकर तो डंडा धनु झुकेगा। राजा लोग या फिर योद्धा लोग जब लड़ने के लिए तैयार होकर चलते हैं तो सबसे पहले प्रत्यंचा डोरी चढ़ाते हैं, और जब विश्राम होता है तो डोरी खोल के रखते हैं, हाँ? जब युद्ध विराम होता है ना तो सेना लोग डोरी खोल देते हैं, निकाल देते हैं, और जब युद्ध में जाने की तैयारी करनी होती है तो फिर डोरी चढ़ाते हैं, बांधते हैं, कसते हैं। तो तैयारी पूर्वक अवस्था को यहां आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचाप भावना रूपी धनुष बाण, भावना माने ध्यान, ध्यान रूपी धनुष में भक्ति रूपी डोरी चढ़ा दिया गया है। ये शत्रु जीतने की तैयारी है, ध्यान देना, क्योंकि शत्रु जीतना है हमें। शत्रु क्यों जीतना है? सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्त करना है। शत्रुओं ने जब तक शत्रुओं को नहीं जीतेंगे तब तक हमारी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं होगी। ये दिखावा जो भक्ति से तुम्हारी मुक्ति नित्य नहीं होगी है, यहां तो नित्य मुक्ति मुक्त चाहिए, नित्य मुक्तता, अन्यथा तुम मुक्त भी होगे तो फिर जय विजय की तरह पतित होना पड़ेगा। नित्य नहीं होगा ना वो मुक्ति, वहां पर भी कुछ न कुछ गलती करोगे, सुस्थिर न होकर अस्थिर होगे। क्या था मुक्ति अस्थिर होने में हेतु? क्या था? द्वैत दृष्टि। प्रसंग आप लोगों ने सुना है कई बार, भेद बुद्धि। भगवान के अनन्य सेवक जय विजय द्वारपाल हो गए, सामीप्य मुक्ति प्राप्त किया, सालोक्य नहीं, सामीप्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालोक्य का मतलब होता है भारत के किसी कोने में तुम पैदा हो जाओ तो ये सालोक्य हो गया, नहीं ना? सामीप्य हो गया। अरे भाई, राष्ट्रपति के आसपास में कहीं घर बना के रह गए, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में है, और इसलिए सामीप्य हो गया, उनकी सामीप्यता। इसी तरह वैकुंठ इतना विशाल लोक है, उस किसी लोक के वैकुंठ के किसी कोने में पैदा होना तो सालोक्य हो गया, लेकिन भगवान नारायण के नजदीक ही तुमको कुटिया बनाने को मिल जाए, हैं? क्या गौरव है, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, देख लो। सायुज्य का मतलब होता है उसके काम में आना, उसके सेवक बनना, उससे अभिन्न होकर रहना, समझे कि नहीं? सायुज्य, सामीप्य और सायुज्य में बड़ा अंतर है। सामीप्य वाला अंतरंग में नहीं जा सकता है, बहिरंग में रह सकता है, बाह्य कक्ष में रहेगा लेकिन अंतरंग नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? बोलो। तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हारे बेडरूम में जा सकता है? हैं? बोलो, जा सकता है बेडरूम में मोटरसाइकिल? लेकिन तुम्हारा चश्मा बेडरूम में जा सकता है कि नहीं? तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारा चश्मा जा सकता है कि नहीं? बोलो। हे देख लो, अंतरंग हो गया ना, मोटरसाइकिल बहिरंग हो गया। भक्तों के ऐसी कैटेगरी वैष्णवों ने स्वीकार की है। कुछ मुक्ति ऐसे है कि उसके लोक में जन्म ले पहुंच गए तो वही मुक्ति है, बड़ा आनंद है वो लोक में। लोक में नहीं है, उससे और ज्यादा कृपा हो गई है उसके महल में आसपास में, और उससे और ज्यादा मिल गई तो सामीप्य और नजदीक, उसे और कृपा हुई तो बस सारूप्य। जब तक सारूप्य भक्ति नहीं मिलती है तब तक जो है वह सुस्थिर राजलक्ष्मी नहीं होता है। सुस्थिर नहीं होता वो मुक्ति, सुस्थिर नहीं होता। अब ये प्रसंग यहां भगवान शंकराचार्य जी शत्रु को जीतकर अपना साम्राज्य प्राप्त करना है उसके लिए साधन दो वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग किया, भावना को चाप के रूप में, भावना माने ध्यान, को धनुष बाण के रूप में, और दृढ़ भक्ति को मजबूत रस्सी के रूप में। वो रस्सी से युद्ध नहीं जीता जा सकता जिस रस्सी से धनुष बाण को तैयार किया और तीर चढ़ाकर जब खींचते ही टूट जाए, वो तो कमजोर रस्सी है। और तीर छोड़ने से पहले खींचना पड़ेगा, खींचते ही रस्सी टूट जाए तो लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा ना। तो डोरी कैसी चाहिए कि बोले सुदृढ़ आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित, कुंचित माने खींचना, गुण माने रस्सी, भक्ति को रस्सी बनाओ, भावचाप युक्त ही। तो हो गया धनुष तैयार, डोरी और धनुष को, बाण को, धनुष को चढ़ा दी तो धनुष तो तैयार हो गया। तो बाण क्या है भाई? अब तीर चाहिए कि नहीं? धनुष तो हो गया, लक्ष्य भेदन तो धनुष नहीं करेगा ना, लक्ष्य भेदन तो तीर बाण, धनुष बाण बोलते हैं ना। तो बाण चाहिए कि नहीं? तीर चाहिए। क्या है तीर? शिवस्मरण, नित्य निरंतर शिव का स्मरण ही। शिव भक्ति रस्सी है, शिव ध्यान धनु है, और शिव स्मरण क्या है? बाण है। शिव स्मरण बाण गणे ही, धनुष एक हो तो भी चलेगा, तीर एक से काम नहीं चलता, तीर ज्यादा चाहिए। इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया है। शिव स्मरण बार बार करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार शिव स्मरण करो, कभी भूलना नहीं, कभी विस्मरण न हो, इसी को आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। सोते समय भी स्मरण करो, जगते समय भी स्मरण करो, चलते समय भी स्मरण करो, बैठते समय भी स्मरण करो। तो यही हो गए बाण, शिव स्मरण बाण। कैसे बोले? अमोघई, शिव स्मरण ऐसा करो कि वह व्यर्थ न जाए। शिव स्मरण को मनोरंजन नहीं मान लेना, वो अमोघई शब्द से यह शिव स्मरण मनोरंजन नहीं मानना, अमोघई। वो तो जीवन के कष्ट से कष्टतम अवस्था में भी उसको नहीं छोड़ना है, तभी जो शिव स्मरण अमोघ बाण होगा। अमोघ बाण का अर्थ होता है लक्ष्य भेदन करे, करने के बाद वह लक्ष्य को भेदन किए बिना व्यर्थ न जाए। धनुष में चढ़ाकर जब उसका भेदन करते हैं तो लक्ष्य भेदन न किए बिना वह बेकार नहीं जाता, उसको अमोघ बोलते हैं। आरूढ़ वक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिव स्मरण बाण गणेर मोघई। महाराज तुम्हारी तैयारी तो ऐसे है कि बड़े भारी शत्रुओं से लड़ना है। बोले हां, निर्जित्य किल विष रिपुन, किल विषय ही रिपु है तुम्हारे। किल विष माने पाप। पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, बोलो। देखो भक्ति सिद्धांत में तुम जो कह रहे हो वो बड़ा पाप हो सकता है, ज्ञान सिद्धांत में भगवान को भूल जाना पाप नहीं है। ध्यान देना, ज्ञान सिद्धांत में सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने को भूल जाना। भगवान को भूल जाना इतने ज्यादा घातक नहीं है, नुकसान नहीं है। अपने को, खुद को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान तो यह है। को हम, ये तुमको ही पता नहीं है, अपने ही बारे में तुमको जानकारी नहीं है। और सनस सुजातीय दर्शन में तो भगवान सनस सुजात ने धृतराष्ट्र को कहा, किम तेन न कृतम पापम। ये सनस सुजातीय दर्शन का श्लोक है। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिण। उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया दुनिया में, जीवन में? किस चोर ने? आत्मा अपहरण, अनात्मा शरीर को आत्मा मान लिया, अनात्मा प्राण को आत्मा मान लिया, अनात्मा इंद्रियों को आत्मा मान लिया, अनात्मा मन बुद्धियों को आत्मा मान लिया। इससे बढ़कर किम तेन न कृतम पापम, सबसे बड़ा पाप तो यही है। और जो पाप है वो तो बहुत क्षुद्र पाप हैं, बच्चे कच्चे हैं पाप के। सबसे बड़ा पाप तो यहीं से शुरू होता है। अकर्ता को कर्ता बता देना, अभोक्ता को भोक्ता बता देना, ज्ञान स्वरूप को अज्ञानी मान लेना, अजन्मा को सजन्मा मानना, ये कम पाप है? ये कोई छोटे मोटे पाप हैं? ये उसी के तरफ यह संकेत कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य। किल विष रिपुन, पाप ही शत्रु है। हमारा शत्रु हमारे ही पाप। अब पाप को पैदा किया किसने, बोलो? पाप के बाप कौन है? तुम खुद हो। अध्यात्म में दूसरे के पाप दूसरों को कष्ट नहीं देता। मेरा पाप तुमको कष्ट देने जाएगा, बोलो? मैंने जो पाप किए, मेरा पाप तुमको कष्ट देने के लिए नहीं जाएगा। तुमको कष्ट कौन देता है? तो तुम्हारा ही पाप, तुमने जो की है वो पाप है। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया परसों से, अब तुम यदि कोई यदि कहे कि मैं एक टाणो खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, नित्य गंगा स्नान करूंगा, चलो नित्य न करो तो 21 तारीख को तो कर लो नर्मदा स्नान। 21 तारीख को नर्मदा स्नान में जा रहे हैं ना कुछ लोग, हैं? सुना है तो कोई नियम बना लेता है कि रोज सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 घंटा मुझे रोज जप करना है, समझे? 4 बजे उठकर जप शुरू करेगा तो कब तक? 7 बजे तक। 7 बजे तक जप करो, फिर 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम में आ जाओ, ठीक है कि नहीं? बोलो, करना क्या है और तुमने? बोलो, सुबह सुबह करना क्या है? 4 बजे उठो, पट्टा ना धोकर आसन लगा के बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जब शुरू कर दो। जब तुम ऐसा संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, शाम को 4 बजे उठने का संकल्प करके अलार्म लगाकर सोते हो, तो ये पता चल जाता है किसको, ये तुम्हारे संकल्प का पता किसको चलता है? तुम्हारे पापों को, पापों को पता लग जाता है ये षड्यंत्र कर रहा है। 4 बजे उठूंगा कहता है, स्नान करूंगा कहता है, जप करूंगा कहता है, मर गए भाई। अब तो हम तो मर गए, बिना मौत मर गए, कौन पाप? तब वो लोग, तुम तो सो जाते हो संकल्प करके, वो मीटिंग करने लगते हैं। ये सच्ची बात है, मैंने गप नहीं किया है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है। तब वे लोग मीटिंग करने लग जाते हैं कि इसको इसके संकल्प अनुसार, इसकी योजना के अनुसार काम करने नहीं देना है, नहीं तो हमारा सत्यानाश करेगा ये, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा ये। तब क्या करना है? तो एक बोलता है, मुझे आइडिया आ गया भाई। क्या? जब वो अलार्म लगाकर सिरहाने में रखेगा घड़ी, जब घड़ी का अलार्म बजेगा तो उसके हाथ में जाकर मैं बैठूं और फट वो अलार्म को बंद करने के लिए उसके हाथ को मैं चला दूंगा, चिंता नहीं करो। तो वो हाथ में बैठता है, कहते हैं ठीक 4 बजे के आसपास में आकर हाथ में बैठ जाता है योजना बनाकर, तो प्रे अलार्म बज गया, टू 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 टू, सोए सोए हाथ बंद करके फिर रजाई ताल ली। क्या मजा, पाप बड़े खुश हो जाते, बस या बस तुमने काम की बेटा, अब आराम से बैठेंगे भाई। और 7 बजे के प्रेमपुरी जाने की जगह 9 बजे तक सो गया, राज किसका हुआ बोलो? पापों का राज हुआ कि नहीं? जीत गए कौन? ये दृष्टांत से तुम, ये महाभारत में स्पष्ट लिखा है, करते यही है कौन? तुम्हारे किलबिश, तुम्हारे पाप षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि ये नियम बनाकर करने लग जाएगा तो हमारा तो नाश हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो बड़ी सावधानी, दृढ़ता चाहिए हो, छोटे मोटे हथियार से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बड़े दृढ़ हथियार की तैयारी कर रहे हैं। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिव स्मरण बाण गणैर मोघै निर्जित्य किलबिष रिपुन। शत्रु हाथ में आकर, तुम्हारा पाप हाथ में आकर घड़ी तक पहुंचने के जगह तुम फट से उठो, हिम्मत करो, उठो, कुछ भी हो, अब नहीं सोऊंगा, थोड़ा सा हिम्मत करो, एक दिन दो दिन सिर दुखेगा, तीसरे दिन तो फिर चार बजे उठे बिना सिर दुखेगा। यही दृढ़ भक्ति है, यही तुम्हारी साधना में दृढ़ता है। डटे रहो, लग जाओ साहस से। निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र, सुधियों में इंद्रा सुधींद्र श्रेष्ठा, श्रेष्ठ सुधी व्यक्ति, सुष्टुधी वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं बोलो? वो इस बात को जानते हैं कि शत्रु मेरे कौन है, उनसे कैसे लड़ा कर जाए, तो लड़ने की तरीका उनको पता है। इसलिए आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम शिव स्मरण बाण, इन सारी साधनों से सुसज्ज होकर सुधींद्र अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, किल भी सरिपुन अपने पाप रूपी शत्रुओं को निर्जित्य विजयी, उन शत्रुओं को जीतकर विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कैसा है वो विजय? सानंदमा बहती, फिर से जीवन वह शत्रु रहित होकर आनंद से विचरण करते हैं, क्योंकि अब शत्रु तो है ही नहीं। अब तो अपना साम्राज्य कैसा हो गया, सुस्थिर राज लक्ष्मी, बस पहले ही थोड़ा संघर्ष लड़ते समय थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार इनों को इन तैयारियों से जीत लोगे ना, फिर तुम्हारे राज्य लक्ष्मी सायुज्य सामिप्य साष्ट्य सारूप्य आदि जो कुछ भी मोक्ष हो वह तुम्हारी स्थिर रहेगी, फिर वहां से कभी विचलन नहीं होगा। सानंद मावहती, आनंद पूर्वक वह भक्त वह मुक्त पुरुष सुस्थिर राज लक्ष्मी अपने साम्राज्य का वो पूरा का पूरा भोग कर पाएगा, यानी उपयोग कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। ये इसी बात को और आगे शंकराचार्य जी ये तो हो गया शत्रु को जीतने की बात। अब दूसरे भाव से भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। ध्यानांजनेन समवेक्ष्य तम प्रदेशम भीत्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री दिव्याश्रितं भुजगभूषणं उद्वहन्ति ये पाद पद्म मिहते शिवते कृतार्थः। हम गरीब क्यों हैं, हम दरिद्र क्यों हैं बोलो? क्योंकि हम साम्राज्य के लिए या खजाने के लिए प्रयत्न नहीं कर पा रहे। छंदों के उपनिषद में एक प्रसंग आता है, उसी से संबंधित यह श्लोक है, या फिर महाभारत में एक प्रसंग आता है उससे संबंधित है। कहते हैं एक कोई व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब था, दीनहीन था, दरिद्र था, और अपने प्रारब्ध के चलते वह भीख मांगकर दिन गुजारा किया करता था, जीवन यापन करता था, भीख मांगता था, और भीख मांगते हुए दो चार पैसे जो मिले, अक्सर भिखारी लोग जो प्राप्त होता है उसका संरक्षण नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो गया वो पी पाके उड़ा दिया। फिर भीख मांगने, उनको पता है ना कि कल भीख मांगने बैठेंगे मिल ही जाएगा, क्यों कल के लिए रखें भाई है? कल के लिए क्यों रखना है? भीख मांगकर आज जो मिला है वो कल नहीं मिलेगा क्या? जिस प्रारब्ध ने आज हमको दिया है 2 रुपया, वो प्रारब्ध कल 2 रुपया नहीं दिलाएगा? बोलो, कल के लिए क्यों रखना है? कुछ भक्त लोग, अपने शुभ चिंतक भक्त लोग, हर साल हम आते हैं 20-25 साल से यहां, जब जाने लगते हैं, जाने का समय होता है, कुछ माताएं ज्यादा ही प्यार करती हैं, ज्यादा ही ख्याल रखती हैं, तो कोई गाठिया लेके आता है, कोई नमकीन लेके आता है, कोई सेव चूड़ो लेके आता है, कोई खाखरा लेके आता है, कोई बिस्कुट लेके आता है। अब हम कहते हैं कि माता जी ये सब क्या है, अब तो जाने का दिन आ गया है, ये सब इतना सारा? बोले नहीं महाराज, लेके जाइए, ये आपको ले जाने के लिए लाए हैं, ये यहां खा लेना, ये पैकेट जो है वो लेके जाना, वहां काम आएगा, वहां खाने के लिए। तो कभी कभी मैं कहा करता हूं, हम नेपाल से जब यहां आते हैं, न खाखरा लेके आते, न बिस्कुट लेके आते, न फरसान लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? सिर्फ प्रारब्ध लेके आते, क्या लेके आते हैं बोलो, समझ में आ गई? सिर्फ प्रारब्ध लेके आते हैं, और वो हमारा प्रारब्ध यहां तुम्हें प्रेरित करके फरसान ला देता है, नमकीन ला देता है, बिस्कुट ला देता है, खाखरा ला देता है, फल ला देता है, कमरों में भरा रहता है। ये व्यवस्था की किसने बोलो? अब क्या हम यहां जाएंगे तो वो सब व्यवस्था करने वाला प्रारब्ध को छोड़कर जाएंगे? बोलो, यहां जिस प्रारब्ध ने खाने की व्यवस्था मिलाई है, हम जाएंगे तो उस प्रारब्ध को यहीं छोड़कर जाएंगे क्या? बोलिए, प्रारब्ध को तो लेके जाएंगे ना, और उस प्रारब्ध यहां व्यवस्था कर सकता है तो वहां व्यवस्था नहीं कर सकता खाने चीज की है? फिर यहां से खाने का चीज ढो के चले ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है? ये आप लोगों का काम है। आप लोग प्रारब्ध पर भरोसा नहीं करते हो, तो हम लेके जाएंगे तभी खान को मिलेगा, हम लेके नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। अरे भाई, केवल प्रारब्ध लेके जाओ, वो प्रारब्ध कहीं न कहीं व्यवस्था करेगा, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। ये बात अलग है कि तुमके लिए खाखरा व्यवस्था न करे, लेकिन सूखी रोटी की व्यवस्था तो करेगा कि नहीं? बोलो सूचक भाई, तुम तो नेपाल घूम के आए हो ना परसों, इस साल किया कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने वहां है? नेपाल में तुम खाखरा लेके तो गए नहीं थे, लेकिन रोटी की व्यवस्था की कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने? दाल की रूप व्यवस्था की कि नहीं? सब्जी की व्यवस्था की कि नहीं है? तो करता है महाराज, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं दृष्टांत दे रहा था, वो जो भिखारी दिन भर भीख मांगता था, शाम को खा पी के उड़ा देता था, समझता था कल फिर भीख मांगूंगा आ ही जाएगा। किसी मेरे जैसे कोई व्यक्ति ने उसको जाकर समझा दिया, अरे मूर्ख, अभी तेरे हाथ पांव सब ठीक ठाक है, जवानी है, सब ठीक है, सब के सब उड़ाना नहीं, कुछ बचा के रख, बाद में काम आएगा। तो उसने समझ ली तो कुछ न कुछ बचाना शुरू कर दिया अब हमारे कहने से। तो कहा कि महाराज कुछ वर्षों में कुछ बच गया। बोले इतना बच गया महाराज, अब क्या करो? बोले अभी तक तो तू मंदिर के दरवाजे के आगे ऐसे ही सोया करता था, अच्छा है तेरे पास पैसा हो गया है, गांव के किसी कोने में थोड़ी सी जमीन खरीद ले और एक झोपड़ी बना ले, कम से कम अपना झोपड़ी होगा ना। कल बीमार हो गया, कुछ हुआ तो अपने झोपड़ी में तो बैठ पाएगा ना, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, भाग यहां से। तो फिर आज भागा, फिर आया, उधर भागा, उधर मारे, उधर भागे। बोले ठीक कहा महाराज, जाके एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब वो जमीन के टुकड़े में एक झोपड़ी भी बना ली, वहीं रहने लगा और रोज मंदिर में जाता था, मंदिर के आगे बैठता था, हाथ फैलाता था, मारता था, कुछ मिले खा पी लेता था और आगे उसी झोपड़ी में सोता था। एक दिन आत्मानंद भी पहुंच गया, कहां उसी भिखारी के, वो छोटा भिखारी है बड़ा भिखारी है ना। महात्मा लोग सुनाते ना, कोई एक व्यक्ति गया राजा के यहां कुछ मांगने के हिसाब से। राजा बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत धन है, उसके यहां मांगूंगा, लाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला बनाऊंगा, यूं त्यू त्यू। पहुंचा वहां, पहुंचा तो वो राजा मंदिर के आगे बैठकर मांग रहा था, हे परमात्मा मुझे दे दे, मुझे दे दे, यूं दे त्यों दे, यू दे। तो उस भिखारी ने कहा कि ये तो भिखारी है भाई, मैं समझ रहा था मैं ही भिखारी हूं, ये तो और बड़ा भिखारी है, अंतर यह है कि मैं छोटा भिखारी हूं, ये बड़ा भिखारी, ये भी मांग रहा है, और जिससे ये मांग रहा है क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं। तो उसने राजा से न मांग कर वो भी मंदिर में प्रार्थना में बैठ गया, कहते हैं ना। ये कहानी कई बार सुना है तुम लोगों ने। तो इसी रहा आत्मानंद पे गया एक दिन उसी झोपड़ी में भिखारी की मांगने। भिखारी कहता महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, फूटे की कौड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जब तक भीख मांगने नहीं जाऊंगा तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्या दूं। पहाड़ में एक कहावत है, सन्यासी के घर में जोगी पावना, पावना बोलते हैं ना मेहमान, सन्यासी के घर में जोगी मेहमान, ले देख लो क्या मिलेगा उसको। स्वयं मांग कर गुजारा करने वाले के यहां दूसरा मांगने वाला मेहमान बन गया। महात्मा ने देखा कि अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो आज पहली बार तुम्हारे मांगने आया, सुबह सुबह पहले मांगा तो हमारा मुंह क्या बोलते हो, बोनी बिगड़ गया। मांगते ही कुछ नहीं है कहने लग गया तो दिन भर हमारा बेकार जाएगा कि नहीं, बोनी बिगड़ गया। कुछ तो है, कुछ नहीं है। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो ओहो, अरे भिखारी तेरे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं। महात्मा तो आश्चर्य लगा, क्या माल है इसके पास। वो भिखारी कहता महाराज क्यों मजाक कर रहे हो? बोले मजाक नहीं, मैं सत कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं, बिल ग्रेड के पास भी नहीं। क्यों हंसे भाई, कम माल है तुम्हारे पास। वह क्या था कि जिस जगह पर उसने झोपड़ी बनाकर वो बैठा था, उस जमीन के नीचे हीरा मोती ज्वारात सब गाड़ के घड़े में गाड़ के रखा हुआ था। महात्मा ने तो उसको देख लिया, इसलिए महात्मा ने कहा तेरे पास तो माल ही माल है। अब वो नहीं देख रहा है, महात्मा तो देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा को दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि का फर्क है ना। शंकराचार्य इस श्लोक के द्वारा इसी दृष्टांत को पुष्टि करने जा रहे हैं। महात्मा ने जब कहा कि तू जहां सो रहा है, जहां पर तेरा बिस्तरा है, उसके नीचे खजाना है, क्या बात बोल रहे हो तुम? बोले मैं सच कह रहा हूं, निकालो उस खजाने को। कैसे निकाले? बोले अब ये झोपड़ी झोपड़ी सब तोड़ फेंको, बिस्तरा को निकाल के बाहर फेंको, झोपड़ी को तोड़ो और ले आओ फावड़ा, खोद डालो यहां। बोले महाराज बड़े मुश्किल से बनाया था ये झोपड़ी, इसको मैं सब तोड़ डालूं? बोले हां, और बड़े मुश्किल से जमीन का टुकड़ा खरीदा था, ये भी खोद के गड्ढा बना लूं? बोले हां। कुछ पाना हो तो खोना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं बोलो? कुछ खोए बिना कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुझे खजाना चाहिए तो कर हम जो कह रहे हैं। बड़ा हिम्मत, पहले तो बड़ा मुश्किल हुआ उसको समझाना, विश्वास में लेना बड़ा मुश्किल हुआ। महात्मा ने जब विश्वास में ली तो गया फावड़ा खरीद के लाया, एक किसी से मांगा, तोड़ डाला झोपड़ी झापड़ी, फेंका बिस्तरा और खुदाई शुरू किया। खोदता गया खोदता गया, उसके जब फावड़ा नीचे लगा, खट आवाज आया, ए, मिल गया मिल गया, खजाना मिल गया। फटाफट उस खजाने को जहां से आवाज आई थी उसको मिट्टी हटाकर उसने देखा तो क्या मिलना था? कुछ नहीं, एक पत्थर था, बड़ा बड़ा सा पत्थर में उसका हथियार फावड़ा खट लगा। बोले क्या मिला? बोले क्या मिलना महाराज, ये बड़ा सा पत्थर निकला है, अब इस पत्थर से तुम्हारी खोपड़ी फोड़े कि हम अपनी खोपड़ी फोड़े? तुम बोलते हो खजाना मिलेगा, यहां झोपड़ी उजाड़ डाली, अब मिला क्या पत्थर? कुछ नहीं मिला। महात्मा ने कहा कि पत्थर तो मिला तो सही ना, खोदो, निकालो उस पत्थर को भी। निकालकर फेंका, फिर खोदा, फिर आवाज आई, तो खट्टा फिर आवाज आई, तो मिट्टी साफ करके देखा तो क्या मिला? बोले एक लोहे का प्लेट मिला। खोदो 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 खोदो, निकालो उसको। अरे भाई, लाखों की जमीन बर्बाद हो गई और हजार की प्लेट, लोहे का प्लेट मिला, क्या मिला? बोले बेटा फेंक इसको, इसका इस लोहे के प्लेट का मूल्यांकन मत कर, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो खजाना तुमको मिलने वाला है उसके सामने इसका कोई मूल्य नहीं, इसकी मोह न कर, फेंको, खोदो। और फिर खोदा तो खोदते गया तो तांबे का मिला लक्षण। अब उसको विश्वास बढ़ता गया, ए कुछ तो मिल रहा है, पत्थर से लोहा, लोहे से तांबा। महात्मा ने कहा कि बेटा फेंक उसको भी। विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य जी ने इसका संकेत किया है, तो उसको भी फेंका, फिर खोदा तो चांदी का प्लेट मिला। महात्मा ने कहा उसको भी फेंक, खोद फिर, और गहराई में गया तो सोने का प्लेट मिला। वाह, मिल गया महाराज, मिल गया महाराज, बड़ा आनंदित हुआ। क्या मिला? बोले सोने का प्लेट मिला। अरे मूर्ख, वो भी काम का नहीं है, फेंक दे और गहराई में जा। जब गहराई में गया तो वास्तव में एक घड़ा जिसके अंदर अनंत अनंत हीरा मोती जवाहरात अरबों खरबों बिल गेट के रूपया से भी ज्यादा। बोलो सुखदेव के पास जो संपत्ति है क्या वो संपत्ति बिल गेट के पास है? बिल ग्रेड के संपत्ति से ज्यादा सुखदेव की संपत्ति थी कि नहीं? बोलो हैं? स्वीकार किया कि नहीं तुम लोगों ने? सुखदेव की संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, महत्व ज्यादा है कि बिल ग्रेड्स का? ये उसको वो खजाना मिला है। तो ये दृष्टांत उस पर यह संकेत कर रहे हैं। अब देखा बाहर निकाला तो फिर अब उसको क्या भीख मांगना पड़ेगा? अब दर दर भटकना पड़ेगा? वो तो सम्राट हो गया, दुनिया में उससे बढ़कर तो और दूसरा है ही नहीं। स्वराट भवती सम्राट भवती छांदोग्य उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग इस तरह कहा है कि प्रतिदिन जीवात्मा उस ब्रह्म में विचरण करते हुए भी ये ब्रह्मानंद है ये अनुभव नहीं कर पाता, ये उसके दुर्भाग्य है। इस तरह छांदोग्य उपनिषद में चर्चा की है। निहितम अक्षत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन तो न बिंदे युहु, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। अक्षत्रज्ञ अज्ञानी व्यक्ति ऊपरी ऊपरी संचरंत, ऊपर 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 से भ्रमण तो कर रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं बैठ रहा है, लेकिन अक्षत्रज्ञ उस जमीन के नीचे जो खजाना गड़ा हुआ है उसको पता नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है? संचरंतो न बिंदे हो एवं एवं इमा सर्वा प्रजा अहर अहर ब्रह्मम गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदेयुः। प्रतिदिन ये क्षेत्रज्ञ प्राज्ञ नामक क्षेत्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में पहुंचता है, लेकिन बड़ा आनंद से सोया तो कहता है लेकिन यही ब्रह्मानंद है ये नहीं जानता, ये अपना ही आनंद है ये नहीं जानता है? इसलिए फिर जागृत में भटकने लगता है विषयों के प्रति। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ संपत्ति देखने के लिए आंख चाहिए, और आंख होने मात्र से दिखाई नहीं पड़ेगा। हो तंत्र में कहा जाता है, तांत्रिक लोग कुछ अंजन बनाते हैं वनस्पतियों से, कुछ विशेष वनस्पतियों से आंख में लगाने के लिए अंजन होता है ना, सूरमा, वो बनाते हैं और उसको विशेष तिथि में उसको तंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, और तंत्र द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद उस सूरमा को आंख में लगाते हैं तो गाढ़ अंधकार में भी उनको उसी तरह दिखता है जैसे आप उजेले में देखते हो। उस अंजन की विशेषता है। उधर संकेत किया शंकराचार्य ने, देख इसलिए अंजन की बात कर दिया। कौन सा अंजन है? ध्यान अंजन। ध्यान को वो अंजन के रूप में तुम प्रयोग करो। ध्यान अंजने न समवेक्ष तमा प्रदेशम, ये देख लो। अंजन लगाने के बाद तो अंधकार में भी उसको इसी तरह दिखता है जिस तरह तुमको उजाले में दिख रहा हो। तमा प्रदेशम भित्वा, अंधकार तुम्हारे दृष्टि को बाधक नहीं कर सकता है वो अंजन लगाने के बाद। महाबली भी ही ईश्वर नाम मंत्र ही, तब शरीर रूपी जमीन में शिव रूपी खजाना, शरीर रूपी जमीन में परमात्मा रूपी खजाना गड़ा हुआ है, और क्षुद्र विषयों में इंद्रियों के पीछे लगकर संसार में भटक रहा है। खजाना कहां है? शरीर रूपी खेत में। वो खजाना गड़ा है, वो वहीं रह रहा है, इसी शरीर में रह रहा है, लेकिन उसको न जानने के चलते क्या हो रहा है कि क्षुद्र विषयों के प्रति इंद्रियों के पीछे लगकर भटक रहा है, दीनहीन होकर। अब गड़ा हुआ धन देखने के लिए तो आंख में अंजन लगानी पड़ेगी ना भाई, है? तो अंजन क्या है? ध्यान अंजन। शिव ध्यान रूपी जो अंजन है वह तुम आंख में लगा लो तो समवेक्ष तमह प्रदेशम। वेदांत तो तुम लोग सुनते हो, आवरण शक्ति से ढका हुआ है। कूटस्थ साक्षी किससे ढका है? माया के आवरण शक्ति से ढका हुआ है। इसीलिए जहां तुम रहते हो वही हुआ है, जहां वो है चाहे वही तुम हो। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी है दर्शन को तरसते हैं। बोलो, जिस हृदय में तुम रह रहे हो उसी हृदय में परमात्मा भी तो रह रहा है, लेकिन आज तक एक ही कमरे में रहते हुए भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। किसके चलते? अविद्या के पर्दे के चलते। वही तम प्रदेश हम, ये अविद्या ही यहां तम है, और वो अंधकार के चलते तुम्हारी साधारण वृत्तियों से वो दिख नहीं रहा है। तब तुम्हें वो अंधकार में भी वो खजाना दिखे, इसके लिए विशेष चक्षु चाहिए, वह है ध्यानांजना। इसलिए विशेष वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उस विशेष वृत्ति को शंकराचार्य जी ने ध्यान कहा। ध्यानांजने न समवेक्ष कहां तम प्रदेशम भीत्वा। ले जी, वो अंजन लगाने के बाद तो उसको अंधकार तो उसको आवृत कर ही नहीं सकता है। महाबली भीरीश्वर नाम मंत्री, अब उसको पता चलेगा कि खजाना तो यही है, तो खोदना पड़ेगा कि नहीं है? तो खोदने के लिए फावड़ा क्या है, है? महाबली भी ईश्वर नाम मंत्री, उस परमात्मा के नाम रूपी मंत्र रूपी फावड़ा। कमजोर नहीं हो, महाबली भी वही बलशाली है, वही खोद सकता है, इस आवरणों को भंग कर सकता है, है? जैसे उस दृष्टांत में उसने फावड़ा लाई और खोदा, पांच पांच आवरणों को निकाल के फेंका, यही पंचकोश विवेक ही। वेदांत में पंचकोश विवेक आता है कि नहीं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये तीन क्रमशः। अन्नमय कोश पत्थर का है, है? प्राणमय कोश लोहे का है, मनोमय कोश तांबे का है, विज्ञानमय कोश चांदी का है, आनंदमय कोश सोने का है। इन पांच कोशों के अंदर खजाना है। इनको जब हटाओगे, अथा तो आदेश नेति नेति अतद व्यावृत्ति, तब जाकर आत्म खजाना मिलेगा। उस पर संकेत कर दिया है, वहां पंचकोश विवेक का है, यहां ध्यानांजन आंख में लगाओ, विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तो ये तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। फिर वही मूला विद्या से जो आवृत हुआ हुआ, तो वो मूला विद्या उसको आवृत कर नहीं पाएगी। ढक ना पाए, मूला विद्या को हट जाए, भित्वातम प्रदेशम, तो साक्षात हो जाएगा। निकालने के लिए पंचकोश विवेक है ये। और यहां नाम मंत्र जप ही, तो ध्यान और जप, ध्यान से आवरण हटेगा, खजाना का पता चलेगा, और जप से आवरण हटेगा। ध्यान से खजाना का पता चलेगा कि यहां पर खजाना है, और जप से उसको ढकने वाला आवरण हटेगा। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्रयी दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती। कहते हैं जहां खजाना होता है वहां सर्प जरूर रहता है। जहां मणि रहता है ना, खजाना रहता है, वहां सर्प पहरेदार बनकर रहता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषणम उद्वहंती, सर्प के द्वारा सुरक्षित किए हुए उस खजाने को उद्वहंती साधक भक्त निकाल लेता है, निकाल पाता है। तो कौन से खजाना प्राप्त होता है उसको? ये पाद पद्म मियते शिवते कृतार्थः, तुम्हारे जो चरण रूपी खजाना उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। तब उसके बाद उसका जीवन क्या होता है? कृतार्थ होता है। फिर उसको दीन दरिद्र होकर दुनिया में है भटकना नहीं पड़ता, कृतार्थ हो गया। तो ये साधन सहित साध्य की बात। तो ध्यान और जप, शिव स्वरूप ध्यान और शिव मंत्र का नित्य निरंतर जप ही साधक को शिव चरण रूपी खजाना प्राप्ति में हेतु है। तो ये काम, खजाना यही है, बस जरूरत है सुदृढ़ नाम मंत्र ही, नित्य रूपी जप रूपी कुदाली से फावड़े से खोदो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।